अमृत सुनाए अमृत नाद सुनाए। अंजन टूट टूटते जाते एक एक किस्वन पर, अंजन टूट टूटते जाते एक एक चितवन पर। गौरी के दुर्लजित लाज साकार हुए कंपन पर, आज चुनौती अंत धनुज की शल शलाकाओं को आमंत्रण भेजा, लघु लघु दीपों ने राकाओं को आमंत्रण भेजा, लघु लघु दीपों ने राकाओं को। तिमिर कृष्ण के संग सलोनी राधा रास रचाए, मिट्टी के नौ में बैठा हंस ज्योति फैलाए। हमसे 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 अमृत नाद सुनाए। ये विभा बड़ी हिंदू विभा पर लगा आवरण तम का, आज तो कौटी पर है विक्रम कनक दीप लघुतम का। तत्पर होकर पाण अड़े हैं दुर्जय समर स्थल में, नहा उठे हैं वीर केसरी आभा की किंगुल में। सारी रात रत जगा कोई आज नामे बुझाई, मिट्टी के नौ में दे बैठा हंस ज्योति फैलाए। हमसो 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 हमका अमृत नाद सुनाए, अमृत नाद सुनाए। प्रकाश का तेरी घर आंगन तुमने अलक जगाए, तिमिर कहां मैं भी तो देखूं दीपक जलता जाए, दीपक जलता जाए। दिखाया तो जग आंसू भरे इंसान को की तो भरे सुल्तान को कर चुकाया जिंदगी में दो जग कुछ दिनों पहरा दिया सुख की गली कुछ दिनों बंदी रहा संताप में नाम का ही भेद थे अंतर न कुछ तृप्ति के सुख में सदा के ताप में भर कर सुनाया तो सावन बने आकाश को पागुन बने उद्यान को कर झुकाया जिंदगी में दो जग आए हुए इंसान को जागे अभिमान दिखाना गुण समारोह में जानू तन का क्या श्रृंगार उगते सूरज की किरणों से हर जागा मन पुलकित होगा उगते सूरज की किरणों से हर जागा मन उल्कित होगा रुकना ना जो चलना जाने बाधा से नाम विचलित होगा राम में क्या कांटे फैलाना राह बनाओ तो मैं जानू राह बनाओ तो मैं जानू सत्ता क्या श्रृंगार सजाना मन श्रृंगारों तुम्हें जानो बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना नहीं कठिन हर दुर्बल को हर दुर्बल को भी धमकी देना और डराना धमकी देना और डराना बेवक को क्या और गिराना उसे उठाओ तो मैं जानू मन श्रृंगारू तो मैं जानू तन का अपनी झपली अपना गाना हटी जनों का दौर पुराना अपनी झपली अपना गाना हटी जनों का दौर पुराना स्वर का ज्ञान नहीं फिर भी हर ताज उठाना और बजाना स्वर का ज्ञान नहीं फिर भी हर साज उठाना और बजाना साधो सुर गा सरगम लय में साधो सुर गा सरगम लय में राग सुनाओ तो मैं जानू मन श्रृंगारो तो मैं जानू सुंदरता को बदवानी के आभूषण से सदा सजाना सूरत से सीरत का रिश्ता नया नहीं सब जाना माना। सूरत से सीरत का रिश्ता नया नहीं सब जाना माना। कड़वे बोल क्या मुख तक लाना, चुप रह पाओ तो मैं जानू, मन श्रंगारू तो मैं जानू। हर उजला परिधान पहनने वाला नाकुता फैलाई, हर उजला परिधान पहनने वाला नाकुता फैलाई। वर्ण जाति और धर्म की खाई पति एकता आए, अंबर की क्या आस ये धरती स्वर्ग बनाऊ, तुम्हें जानू मन श्रृंगारो तुम्हें जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाऊ। किसको सुख दिया संसार, मत व्यथित हो भूल किसको सुख दिया संसार ने। स्वार्थ ने सबको बनाया है यहाँ करतार ने, मत व्यथित हो भूल किसको सुख दिया संसार ने। स्वार्थ ने सबको बनाया है यहाँ करतार ने, विश्व में एक फूल तू सबके हृदय भाता रहा। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय अर्शादार, जब न तेरी दया पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्तार को। व्यतीत हो भूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। मत व्यतीत हो जिस दिव्य लोक को पीड़ा, मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोक को पीड़ा सज्जा, उनके प्राणों से पूछो वे पाल सकेंगे पीड़ा, उनके प्राणों से पूछो वे पाल सकेंगे पीड़ा। आलोक यहाँ लुटता है, आलोक यहाँ लुटता है, बुझ जाते हैं तारागण अविराम जला करता है, पर मेरा दीपक का मन अविराम जला करता है, पर मेरा दीपक का मन। जिसकी विशाल छाया में जग बालक सा सोता है, मेरी आंखों में वो आंसू बनकर होता है, मेरी आंखों में वो आंसू बनकर होता है। उनसे कैसे छोटा है, उनसे कैसे छोटा है मेरा ये भिक्षुक जीवन, उनसे कैसे छोटा है मेरा ये भिक्षुक जीवन। उनमें अनंत करुणा है इसमें असीम सूनापन, उसमें अनंत करुणा है इसमें असीम सूनापन। मेरी लघुता पर आती इस दिव्य रूप को लज्जा, पीड़ा उनके प्राण से पूछो वे पाल सकेंगे। इस दुनिया में मेरी लघुता, इस दुनिया में बहुत कई रगड़ी मछली है, मेरी प्रभुता इस दुनिया में बहुत कई रगड़ी मछली है किंतु कठोर नहीं हो पाई है तो लगता है असली है। मेरी प्रभुता इस दुनिया में बहुत कई रगड़ी मछली है। नहीं मुझे मालूम बना था मैं कैसी इसका अधिकारी, नहीं मुझे मालूम बना था मैं कैसी इसका अधिकारी, या मैंने कुछ पाप किया था, या मैंने कुछ पाप किया था जिसकी कभी की आंख सजा है, या मैंने कुछ पाप किया था जिसकी कभी की आंख सजा है। मेरे मन प्राणों के मतने को तुमने क्या विधि मुझको सिर्जा है। मेरी मृदुता इस दुनिया में बहुत कई तगड़ी होती है किंतु कठोर नहीं हो पाई है तो लगता है असली है। मेरी मृदुता छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूती आत्मकथा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूती आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि और की सुनता मैं हूं। न देगा दुख भी साथी, साथ न देगा दुख भी, काल छीनने आता, काल छीनने दुख आता है, जब दुख भी प्रिय हो जाता है, काल छीनने दुख आता है, जब दुख भी प्रिय हो जाता है। नहीं चाहते जब हम दुख के बदले में लेना चिर सुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी। जिस पर्वत साका कर हो अश्रु बहाना पड़ता नीरव, इस पर्वत का कारण हो अश्रु बहाना पड़ता नीरव, उसी विवशता से दुनिया में होना पड़ता है हसमुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी। इसे कहो कर्तव्य सुखरता या विरक्ति या केवल जड़ता, इसे कहो कर्तव्य सुखरता या विरक्ति या केवल जड़ता, भिन्न दुखों से भिन्न सुखों से होता है जीवन का दुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी। साथी हमें अलग होना है, भार उठाते सब अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल, भार उठाते सब अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल, अपने सुख दुख के बोझे को सबको अलग अलग ढोना है, साथी हमें अलग होना है। संग क्षणिक ही तेरा मेरा, संग क्षणिक ही तेरा मेरा, एक रहा कुछ दिन सत डेरा, ठीक रहा कुछ दिन तकदीरा, जो कुछ भी पाया है हमने एक न एक समय खोना है। साथी हमें अलग होना है, मिलकर एक दीप आगानी, मिलकर एक गीत आगानी, मिलकर दो दो अश्रुबहाने, अलग अलग ही अब से हमको जीवन में गाना रोना है। साथी हमें अलग होना है, साथी हमें अलग होना है। नीर भरी दुख की गदरी चंदन में फिर निस्पंद बसा, कंदन में आंसू विश्व बसा, कंदन में फिर निस्पंद बसा, कंदन में आंसू विश्व बसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जल मेरा पग पग संगीत भरा, आंखों में स्वप्न पराग जरा, नव के नव रंग उनते कुकुर छाया में पथ को नाम करता आना, पद चिन्ह ना देता जाना, सुधि मेरे आगम की जल में सुख की तिहरन को अंत है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना परिचय इतना इतिहास यही पूरी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की
जो विद्यादि सागर सुति गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, पहले मेरे साथ एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें, उसके बाद हम आगे दो तीन बातें करेंगे। जितना बन सकेगा, जितना मैंने समझा सीखा सुना वो सब कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। आप सबका आग्रह मुझे यहां तक ले आया, वैसे मैं अपने आप को इस दशा में नहीं पाता हूं कि कुछ कह पाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। मैं सुनाने को हाले दिल कह देता, पर कोई सुनने वाला होता तब ना। आप शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये मैं पहले 20 मिनट में देख चुका हूं। आप अधीर जरूर हैं सुनने के लिए, लेकिन सुनना नहीं चाहते, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सुनाते चले जाएं। इसलिए अब चूंकि आपका आग्रह है और आप शायद कुछ लोग सुनने चाहेंगे, इसलिए मैं दो चार बातें आपसे करूंगा। एक बार पहले हम नमोकार मंत्र बोल लें। उत्सव तो ये आनंद का है, लेकिन चेहरे पर लोगों के उतना आनंद नहीं है, और जब आनंदित होकर के आदमी मेरे सामने बैठता है तो मैंने अक्सर देखा है कि 10 नहीं 15 नहीं, मैं बहुत बहुत देर तक कुछ भी कह सकता हूं, आपको सुना सकता हूं। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग इस स्थिति में नहीं हैं, इसलिए ही मैं नमोकार मंत्र आपसे एक बार उच्चारित करवा रहा हूं कि शायद नमोकार मंत्र से आपके दिल में, आपके हृदय में कोई आनंद का रास्ता खुले, आप आनंदित हों, और फिर आनंदित होकर के बैठें ताकि जो भी आपके अंदर आए वो आप सबका सब सुनते चले जाएं। किसी को मौका ही ना आए कि किसी बाहर की आवाज की तरफ आपका ध्यान जाए। बाहर बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन उन सारी आवाजों के बावजूद भी जो मेरी आवाज है वो आप तक पहुंचती रहे। इसलिए एक बार नमोकार मंत्र मेरे साथ बोले। नमो हरिहंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आयरीयाडम, नमो वध्यायाडम, नमो लोये सौवसाहुडम, एसो पंच नमोकारो सौव पाव पनासनो, मंगलाडं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। इसके पढ़ने के बाद मंगलमय वातावरण हो, ये हमने कामना की है। आपसे दो तीन बातें जो करने की हैं वो कर लूं। पहली बात की बहुत सारे पर्व आते हैं, त्योहार है आज भी, और आखिर इन सब पर्वों की या त्योहार मनाने की बार बार क्या जरूरत है। और इस पर्व पर तो टीका भी लगाया जाता है और एक राखी भी बांधी जाती है, और पर्वों के साथ कभी दीपक जलाए जाते हैं, कभी रोशनी की जाती है, कभी लड्डू भी बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के पर्व हैं, लेकिन आखिर पर्व के पीछे, त्योहार के पीछे मनाने का क्या उद्देश्य है? बिल्कुल ऐसा ही उद्देश्य है जैसा कि एक मंदिर में आने का, एक तीर्थ में आने का है वैसा ही त्योहार मनाने का उद्देश्य है। पहले मंदिर में आने का, तीर्थ में आने का उद्देश्य समझ लें ताकि बात साफ हो जाए कि त्योहार क्यों मनाते हैं। पहला प्रश्न कि मंदिर में क्यों आते हैं और तीर्थ में इकट्ठे क्यों। लोग मंदिर में भगवान के पास आते हैं, अकेले थे दो होने आते हैं, यही हुआ ना, घर में अकेले पड़ गए थे, भगवान अब साथ में हो जाए मेरे, क्योंकि और कोई साथ नहीं देता दुनिया में, एक ही आदमी है जो बड़ा साफ सुथरा है, जिससे कि जिसके सामने हजार बात कर लो, गाली दे लो, अच्छा बुरा सब कह लो, वो चुपचाप बैठा रहता, कुछ नहीं कहता। एक ही चीज ऐसी है, वो भगवान है, और उसके साथ आदमी जुड़ने के लिए मंदिर आता है। अब भले ही हम किसी और वजह से आते हो हम नहीं जानते, लेकिन उद्देश्य तो यही था। और तीर्थ पर आने का मतलब क्या हुआ ये तो आपने आके ही देख लिया, वरना नीचे इतने सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते थे। अगर किसी के यहां कोई बुलाए तो भी नहीं जा सकते थे, यहां सब आए हैं, यहां सब एक दूसरे के बहुत करीब होने के लिए आए हैं, सब एक साथ मिलकर के बैठने के लिए आए हैं, यहां एक साथ संवेद स्वरों में अपनी प्रार्थनाएं करने के लिए भगवान के पास आए हैं। और जब प्रार्थना संवेद स्वरों में की जाती है, एक साथ मिलकर की जाती है, वैयक्तिक नहीं होती प्रार्थना, तब वो सही प्रार्थना होती है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता, उसमें मैं का भाव नहीं होता, उसमें हम सब हो गए, मैं अकेला नहीं आया, हम सब इतने सारे लोग आए हैं, तो वहां पर अहंकार टूटता है। ये पर्व हमें एक दूसरे से मिलकर चलने के लिए इसी तरह आते हैं कि हम अकेले अकेले रहते हैं, बड़े अहंकार में डूबे रहते हैं कि दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है, तो जरा हम इन पर्वों पर इकट्ठे होके देख लें कि नहीं भाई, हमारे जैसे और भी लोग हैं जिन सबके प्रति हमारे कर्तव्य हैं, जिन सबके प्रति हमारी सद्भावनाएं होनी जरूरी है, इसलिए ये पर्व जरूरी हो गया। और इस पर्व के साथ दो बड़ी मीठी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं मीठी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि शक्कर जुड़ी हुई है उसके साथ, मीठी इसलिए है कि मन को अच्छी लगती है, किसी को नमकीन भी अच्छी लग सकती है, तो नमकीन है दोनों ऐसा कह लो, जिसको नमकीन अच्छा लगता हो उसके लिए नमकीन है, जिसको मीठी अच्छी लगती है उसके लिए मीठी है। वो ये कि एक तो आप सुन चुके, एक कथा तो आप सुन चुके जो कि धर्म से संबंधित है, ये पर्व धर्म से भी संबंधित है और वैयक्तिक लौकिकता से भी संबंधित है। धर्म से संबंधित तो आप समझ ही गए कि 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ और विष्णु कुमार जी ने उसको, मुनि महाराज जी थे और उन्होंने उसका निवारण आज के दिन किया। और इसमें यह मत समझना कि तुमने धर्म की रक्षा की, तुमने भगवान की रक्षा की, तुमने मुनि महाराज की रक्षा की, ऐसे किसी अहंकार में, ऐसे किसी मुगालते में नहीं रहना। भगवान की क्या रक्षा करोगे तुम, अरे अपनी तो कर लो, भगवान की रक्षा तो अपने आप वो करते हैं, मुनि की रक्षा वो अपने आप करते हैं, तुमने अपनी रक्षा करने के लिए उनकी रक्षा की हो तो कोई बात नहीं, तुमने मुनि महाराज की रक्षा इसलिए की कि अगर मुनि महाराज नहीं रहेंगे तो कल के दिन तुम्हारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, तुम्हारा अपना, तुम्हें कौन सुनाएगा दो बातें धर्म की, इसलिए तुमने अगर जाकर के उनको बचाया हो तो तुमने अपने आप को बचाया, मुनि महाराज को बचाने की तुम में ताकत नहीं है। इसी तरह ऐसे किसी ख्याल में नहीं रहना कि मैंने मंदिर की सुरक्षा की, मैंने भगवान को बचाने के लिए आज राखी बांध ली है, मैं भगवान को बचाऊंगा, भगवान तो बिल्कुल सुरक्षित है, उनकी चिंता तुम मत करना। हाँ, तुम सुरक्षित नहीं हो, भगवान अगर नहीं रहेंगे तो तुम सुरक्षित नहीं, इसलिए तुम अपनी मूर्ति की सुरक्षा के लिए, अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए तुम अगर दूसरे के लिए कुछ करते हो तो वो यही मानना कि अपने लिए कर रहे हो। और है तो ऐसा ही, कोई किसी के लिए नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। मैं आज इस आदमी को चाटा इसलिए नहीं मारता क्योंकि हो सकता कल अपने लिए कोई चाटा ना मारे, इसलिए और कोई वजह नहीं है। जैन धर्म में सिर्फ यही बात है अहिंसा की, अहिंसा इसलिए नहीं की जाती कि दूसरे को हम बचा लें, नहीं, तुम दूसरे को बचाओगे इसका मतलब है कि अपने बचाने की चिंता तुम्हें ज्यादा है, तुम दूसरे को नहीं मार रहे इसका मतलब यह है कि तुम मरने से खुद डरते हो, इसलिए अपनी मौत और अपनी जिंदगी बचाने के लिए आदमी को चाहिए कि वो दूसरे की मौत के लिए कारण ना बने, दूसरे की जिंदगी की सुरक्षित होने के लिए कारण बने। ऐसी भावनाएं के लिए ये पर्व है और ये रक्षा सूत्र जो आपने बांधे हैं, अभी और लोग बांधेंगे, तो सबके लिए है। ये एक दृष्टि है, मेरा कोई आग्रह कभी भी नहीं रहता कि आप इसको स्वीकार ही करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो स्वीकार करें। दूसरी जो है वो संबंधित है हमारे गृहस्थ जीवन से, जिसको कि जिसके बाबत भी एक कहानी है कि किसी राजा ने आक्रमण किया देश में, रानी और राजा हुआ करते थे, तो एक देश में राजा मर गया था और वहां पर सिर्फ रानी शासन करती थी, किसी दूसरे देश ने उस पर आक्रमण किया होगा और रानी मुसीबत में पड़ गई कि अब कौन सहायता करे, तो उसने उस देश के विरोधी देश के पास एक रक्षा सूत्र रख करके भेजा था और उसको अपना भाई बनाया था, उसने आकर के उस राजा से, दूसरे राजा से उस रानी को बचाया था। कहते हैं तब से ये रक्षाबंधन शुरू हुआ। ऐसी एक लौकिक है, दोनों कहानियां अपनी अपनी जगह पर बहुत सही है। आप लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर भी बहन की रक्षा करने के लिए भाई नहीं गया था, भाई बहन की रक्षा कर भी नहीं सकता। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कह रहे हैं आप, वही एक बात है, कौन किसकी रक्षा कर सकता है। तुमने अपनी रक्षा के लिए यह सब कुछ किया है। बहन जानते हो किस बात का प्रतीक है? दो बातों का प्रतीक है बहन, जो कि शायद आपके दिमाग में नहीं आई होंगे। एक तो शील का प्रतीक है और दूसरे निस्वार्थता का प्रतीक है। मैं ये दो प्रतीक आपको समझा दूं। शील का अर्थ आप समझते हैं, स्वभाव भी होता है और शील का अर्थ ब्रह्मचर्य भी होता है। आदमी की जिंदगी में उसका अच्छा स्वभाव हो, इस दिशा में अगर कोई मोड़ सकता है, उसके चारित्र में उन्नति ला सकता है, तो क्यों नहीं नाम रख दिया मां का और पिता का? मुझे कभी समझ में आज तक नहीं आया, अभी भी नहीं आता। बेटे को मां बेटे को राखी बांधती कि मां मैं तुम्हारी सेवा करूंगा जिंदगी भर, तुम्हारी औरों से रक्षा करूंगा, या पिताजी बांध देते मां को हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा क्यों हुआ आखिर कि बहन ने ही भाई को राखी बांधी? इसके ही प्रतीक ये हैं। सील का प्रतीक जो मैंने कहा कि भाई तुम अपने स्वभाव में रहना, बहन को देख करके, बहन के प्रति जो संबंध होते हैं उनकी वजह से मैं समझता हूं कि आदमी अपने चरित्र में दृढ़ता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर कि वो दृढ़ता ला सके। और दूसरी बात, जिस घर में वो पैदा होती है उस घर में नहीं रहती, इसलिए वो ज्यादा सुरक्षित नहीं है, वो औरों की अपेक्षा अधिक असुरक्षित है। इस वजह से किसी ना किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो उसकी सुरक्षा करे, और ये भार भाई के ऊपर पड़ा। पिताजी और माँ तो उसको जन्म देकर के बरी हो गए, ज्यादा हुआ तो शादी करके बरी हो गए, अलग हो गए, लेकिन अब भाई की ड्यूटी है, भाई का कर्तव्य है कि वो उसकी सेवा करे। अब भले ही संबंधों में उठापटक हुई हो, मैं नहीं जानता, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे और दूसरों के बीच संबंध कैसे रह गए। हमारे और दूसरों के बीच संबंध तो बड़े मृदु होना चाहिए थे, और होंगे भी, होना चाहिए और होंगे भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कभी कभी शक हो जाता है कि अब लोगों के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे, और मुझे वैसे किसी के बाबत कहने की जरूरत नहीं है कि आपके अच्छे संबंध नहीं, मुझे क्या लेना देना। फिर भी मैं जो भी कह रहा हूं उसे कभी कभार आप ये जरूर देख लिया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ऐसा कुछ करते हो, हमारे संबंध अच्छे ना हो, तो अच्छे ना हो तो अच्छे बना लेना। आज पर्व के दिन बैठ करके हम एक तरफ लौकिक जीवन है, दूसरी तरफ पारलौकिक जीवन है। पारलौकिक जीवन में जब तक दूसरे के प्रति हमारा वात्सल्य नहीं होगा, या लौकिक क्षेत्र में हमारा वात्सल्य नहीं होगा, तब तक हम उससे जुड़ नहीं सकेंगे, उससे हमारी मैत्री नहीं हो सकेगी, हमारी करुणा कभी हमारे भीतर जागृत नहीं हो सकेगी। तीन शब्द मैंने आपसे कह दिए, और जब मैं शब्द बोलता हूं तो मेरे सामने शब्द एकदम अपने सारे अर्थों के साथ खड़ा हो जाता, बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं तीनों शब्द का आपको अर्थ बताऊं तो और 2-5 मिनट लग जाएंगे। मैत्री शब्द कह दिया मैंने, करुणा शब्द कह दिया, वात्सल्य कह दिया, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द मैंने कह दिए, मगर आपके दिमाग में उनकी क्या इमेज है, कैसे उनको हम लें ये भी समझ लें। जैसे आषाढ़ के दिनों में पानी भरे बादल आते हैं, तो जो उनमें पानी भरा हुआ है ना, वो तो है करुणा, और जब वो बरस जाते हैं तो वो है मैत्री, आप समझ रहे हैं। और जब पानी बरसने के बाद तृप्ति हो जाती है ना, वो है वात्सल्य। तीनों शब्द बहुत अच्छे हैं और तीनों का इन्हीं अर्थों में प्रयोग करना। तुम जब भर जाओगे तभी तुम करुण होगे, जब तुम भर जाओगे तुम्हारी करुणा तुम्हारे अंदर से बहना शुरू हो जाएगी, तुम बरसना शुरू हो जाओगे, तब तुम्हारी दूसरे के प्रति मैत्री होगी, और जब दूसरा तुम्हारी मैत्री से तृप्त हो जाएगा तब वात्सल्य कहलाएगा। और इस वात्सल्य की बात करने आज हम बैठे हुए हैं। शब्द तो बहुत छोटे हैं लेकिन अर्थ बहुत कुछ है, इन अर्थों को आप समझ लें। मैं एक कहानी आपको सुना दूं, पता नहीं, बड़ा शक लगता है कि इतनी सारी बातें कहने के बावजूद भी पता नहीं कुछ याद रहा कि नहीं रहा, कहानी जरूर याद रह जाएगी, इसलिए सुनाए देता हूं आखिरी में, थोड़े थोड़े में सारी बात आपके समझ में आ गई होगी, आखिरी में और आ जाएगी। जब ये रामकृष्ण परमहंस हुए हैं और विनोबा जी हुए, आपके विवेकानंद जी हुए, आप सबको मालूम है, विवेकानंद का नाम पहले सुरेश था, सुरेंद्र था, विवेकानंद का नाम पहले सुरेंद्र था। वो जब रामकृष्ण के पास पहुंचे, उनके गुरु थे रामकृष्ण, तब उन्होंने उनके लिए शिक्षा दी, विवेकानंद बहुत प्रसिद्ध हो गए, उनके प्रवचन होने लगे, देश में उनकी ख्याति फैल गई। एक बार क्या हुआ कि उनने सोचा विदेश की यात्रा की जाए और वो विदेश गए। जाने के लिए तैयार हुए विदेश तो सोचा कि गुरुजी का आशीर्वाद लेके आए, पहुंचे वहां पर गुरुजी नहीं थे और इनको जाना जरूरी था, गुरुजी शायद 2-4-10 दिन में वापस लौटते। तब मां शारदा थी उनके गुरुजी की पत्नी, उनको वो मां शारदा बोलते थे। तो मां के पास पहुंचे, बोले मां मैं विदेश जा रहा हूं और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, आप आशीर्वाद दें। वो कुछ नहीं बोले, बहुत अनपढ़ थी कहते हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, देहात की थी, अपना रसोई बना रही थी और उसी बीच में विवेक सुरेंद्र पहुंचे थे। सुरेंद्र ने फिर एक बार कहा कि मां मैं आया हूं, विदेश जा रहा हूं और आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले हां थोड़ी देर में देती हूं। सुरेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ।